क्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यापदोरिपन्माकुरिन्दोष्टवाचि राधापुण्डं गिरिवरमहोरान्ता माधवासं श्रूयत् कृपया श्रीकृतं नतु वन्धाकल्पतरुभ्यश्च कृता सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवस्थिते गुरुदेवभ्यचन्द्राय राधिकायै सदादये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो भक्त्या विहीनापराधलङ्कैस्तानुकामानुसरन्तमस्ते कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्न प्रेमस्ते यं प्रव्रजन्तमन्ते तमपे च दृश्यं द्वैपायनो विरहकासंयायुधा पुत्रे सम्यक्तया सर्वो भीरो मैं आप सभी लोगों को से क्षमा मांगता हूँ कि मैं अंग्रेजी भाषा में अच्छी तरह से अपने काम को प्रकाश नहीं करता, इसलिए आप लोगों से आदेश मांगता हूं कि मुझे हिंदी भाषा में ही बोलने की अनुमति दी जाए। मैं सबसे पहले अपने परमाराध्य शिष्य गुरु पार्षदमा नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद किस्मत भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में असंख्य असंख्य कोटि बार दंडवत प्रणति ज्ञापन करता और उनकी कृपा शिक्षक तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद किस्मत भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणत होकर उनकी कृपा शिक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। विशेष करके आज मैं अयोग्य होने पर भी जैसे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी मुझे सुख को बहुत ही स्नेह करते, उनका स्नेह याद करने पर मैं जगत हुआ हो जाता हूं। न जाने क्यों मुझे इतना स्नेह करते थे, अपने अंतिम क्षणों में भी मुझे बुलाकर मुझे बहुत सी बातें कही। आप सभी लोग जानते हैं जो कि प्राचीन वैष्णव और उसी तरह से उनके सेवक ये सब वैष्णव लोग भी मुझे यज्ञ को बहुत तरह से सम्मान प्रदान करते हैं, इसलिए मैं उन्हें सबका ऋणी। मैं इस सभा में प्रगति सभा में दिलगत सभा में कुछ बोलने के लिए अयोग्य होने पर भी इन लोगों ने मुझसे पुनः पुनः अनुरोध किया कि आप कुछ यहां पर कुछ बोलिए। मैं उनके आज्ञा को पूरे भारत करकर मैं कुछ बोलने का प्रयास करता हूं। श्रीमद भागवत का शायद प्रसंग चल रहा है, दक्ष प्रजापति का प्रसंग चल रहा है। दक्ष प्रजापति नारद ऋषि को अनुरोध किया है, इसमें विश्व में आपके समान तत्वज्ञानी भगवत भक्त और सब प्रकार से योग्य कोई भी शिक्षक नहीं देख पा रहा। मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, उनको अनुग्रह करके आप कुछ शिक्षा दी। उन्होंने मस्तु कहा, ऐसा ही हो। उन्होंने अपने बहुत से लड़कों को एक ही साथ में उनके पास में भेज दिया, नरक के पास में वो शिक्षा देने लगे। पहले ही हमको समझने देंगे ये दक्ष प्रजापति जी है क्या। प्रजा उत्पन्न करने में दक्ष है, बड़े कुशल हैं, बहुत एक्सपर्ट है, इसलिए इनको दक्ष प्रजापति कहते हैं। प्रजा कैसे उत्पन्न होती है? रजोगुण से उत्पन्न होती है, इसलिए रजोगुण के ये बड़े एक्सपर्ट हैं। कैसी प्रजाएं संकति उत्पन्न हो सकती है, इस काम में भी बहुत चतुर हैं। उनका काम ही यही है कैसे अधिक से अधिक बच्चे उत्पन्न हो सके, जगत की सृष्टि हो। इसलिए इस विषय में जो चतुर होते हैं उनको तो वो विद्वान मानेंगे, और ये होगा देहात्म बुद्धि के कारण। देहात्म बुद्धि कहते हैं जिसको देह में ही आत्मा का ठीक होती, मैं ये शरीर ही हूं। इस विषय में जो एक्सपर्ट होगा शरीर को अच्छी तरह से रख सकेगा, अच्छी से अच्छी अधिक से अधिक संतति उत्पन्न कर सकेगा, इनकी दृष्टि में वही व्यक्ति सबसे दक्ष और चतुर। नारद जी किंतु ऐसे थे नहीं, उन्होंने ब्रह्मा जी अपने पिताजी को कह दिया था, पिताजी ने आदेश दिया तुम भी प्रजा उत्पन्न करो। उन्होंने प्रभु आप अपना आदेश लौटा लीजिए, मैं तो एकमात्र भगवान की उपासना करूंगा, हमारा यह शरीर किसी दूसरे काम में नहीं आएगा, आप चाहे जो कुछ करें मुझे अभी संपाद दें, मुझसे प्रसन्न रहें अप्रसन्न रहें, किंतु मैं तो भगवान की उपासना ही करूंगा। प्रजापति में और नारदी में वयस्क होना और संभव, विरोध होना और पसंद और संभव, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हमारे लड़के को परमात्मा की शिक्षा दी जाए और वो लड़के ये संसार में बच्चे उत्पन्न कराने के बाद भगवान का भजन करने के लिए बैरागी बन जाए संन्यासी बन जाए, वो नहीं चाहते। उन्होंने बच्चों को पढ़ाना आरंभ किया। क्या पढ़ाया? भागवत में वो तो नहीं लिखा है, अभी थोड़ा सा कुछ लिखा है, किंतु जो उन्होंने शिक्षा दिया और जो उन्होंने जो शिक्षा दी है उससे प्रतीत होता है कि उन्होंने भक्ति की शिक्षा दी। उन्होंने बच्चों को बुलाया और पढ़ाने लगे, उन्हें शिक्षा देने लगे। पहले तो उन्होंने अ आ ई ऊ इत्यादि अक्षर की शिक्षा दी। अक्षर किसको कहते हैं? जिस वस्तु का विनाश हो जाते हैं उसको कहते हैं क्षर, क्षरति इति क्षर। जिनका ध्वंस हो जाता है उन वस्तुओं का नाम क्षर है। किंतु इस जगत में एक ऐसी भी चीज है जिनका कभी भी विनाश नहीं होता, जिनका कभी रूपांतर नहीं होता, जिनका कभी परिवर्तन नहीं होता, वह एक रस एक समान रहता है, उसको कहते हैं अक्षर। वो अक्षर दो प्रकार का है, एक इन जीवों में जो मैं हूं सुख दुख की अनुभूति करता है उसको कहते हैं जीव, जीव भी अक्षर है, किंतु अणु चैतन्य है, और एक दिव्य चैतन्य है जो परम परमात्मा है, परमेश्वर है, भगवान है, वो अक्षर अपने स्वभाव से कभी भी छरित नहीं होता, कभी माया में नहीं पड़ता, उसका कभी रूपांतर नहीं होता, वो सब समय सच्चिदानंद को पता रहता है। इसलिए अक्षर कहने से अकारण्य उच्यते कृष्ण, अक्षरों का कहने से कृष्ण का बोध होता है, और उनके सेवकों का जो अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित होकर के नित्य काल भगवान की सेवा करते हैं उनको अक्षर कहते हैं। यही दो वस्तु अक्षर है तो एक ही वस्तु, एक ही परम पिता परमेश्वर जो है कृष्ण है, यही अक्षर वस्तु। और जी जब क्षरित हो जाता है अपने स्वभाव से तो बद्ध हो जाता है, इसलिए परम अक्षर नहीं है, परम अक्षर वो प्रभु। इसलिए नारद जी ने उनको शिक्षा दी परानुरक्ति ईश्वरे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा भक्ति जिज्ञासा। हम अपने स्वरूप को कैसे समझ सकें, हम कहां से आए हैं, कहां हमें जाना है। हम चाहते हैं सुख किंतु मिलता है दुख, हम नहीं चाहते हैं हम मरे किंतु हमको मरना पड़ता है। अवसंभाव जातक से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म भी कर, जिनका जन्म है उनको जरूर मरना पड़ेगा। इस जगत में जिनको दुख है उनको सुख भी होगा, अवसंभाव होगा। इसलिए कैसे ये सब दूर होकर के हम नित्य शांति और सुख पा सकते हैं, इसलिए बच्चों से कहा कि यही हम लोगों के लिए जिज्ञासा, हम सभी लोगों के लिए भी यही जिज्ञासा। हम कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं और कैसे उनसे मिल सकते हैं। आपके प्रभुपाद जी ने श्री भक्ति वेदांत स्वामी जी ने भी गीता में, गीता के इंट्रोडक्शन में ये सब चीजों को बताया। मनुष्य वही है जिनके हृदय में ये प्रश्न उठते हैं, वो मनुष्य मनुष्य नहीं जिनके हृदय में ये प्रश्न नहीं उठते, वो पशु से भी गया बिना पूंछ और बिना सिंह का वो जानवर जिसके हृदय में ये सब चीजें प्रश्न नहीं उठते, वही व्यक्ति परमार्थ का अधिकारी है। ये प्रश्न उनके हृदय में जागृत किया। नारद जी ने दक्ष प्रजापति के लड़कों के हृदय उन्होंने पूछा कि प्रभु ये जिसके विषय में कहते हैं अक्षर, वो अक्षर क्या है और कैसे उसकी प्राप्ति हो सकता है। उन्होंने बताया परानुरक्ति ईश्वरे, यही नारद सूत्र का द्वितीय सूत्र है, यहीं से भक्ति आरंभ होती है। नारद जी भक्ति के मूल आचार्य हैं, नारद से ही व्यास आए, व्यास से आए देव गोस्वामी और शुक्रदेव गोस्वामी से पीछे में और सब आचार्य जो आए, जो अभी तक हम बड़े सौभाग्यवान हैं कि उस धारा में आए। कम सौभाग्य की बात नहीं है कि हम इस धारा में उस लाइन में हैं जिसमें नारद जी थे, व्यास जी हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं और चैतन्य महाप्रभु हैं, माधवेंद्रपुरी पाद जी, इकतपुरी जी, नित्यानंद जी इस धारा में, जिसमें स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी हैं, जिसमें रूप गोस्वामी है। आज हम लोगों का कितना सौभाग्य है जो उस लाइन में है। कम अपने को सौभाग्य मत मान मन मानेंगे, बहुत बड़े हम लोग सौभाग्यवान हैं। हम लोग वशिष्ठ इत्यादि से भी, हमारे जितने भी ऋषि हो गए हैं कवि हवि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पित्रलायन इत्यादि, मैं समझता हूं कि आप लोग उन सभी से भी बड़े सौभाग्यवान हैं जो इस लाइन में आए हैं भागवत की लाइन में। इसलिए अपने को बहुत सौभाग्यवान समझेंगे और उसको भक्ति में जो उनके विचार है उनमें प्रतिष्ठित होने की चेष्टा करते हैं। तब कहते हैं परानुरक्ति ईश्वरे, बच्चों को पढ़ाते ईश्वर के प्रति अनुरक्ति, अनुरक्ति ही नहीं परम अनुरक्ति, अपनी चरम सीमा तक यदि अनुरक्ति उस पर ईश्वर में हो जाए तो इसी का नाम अनुरक्ति। किसको कहते हैं, रक्त माने होता है, यदि लाल कोई रंग है तो उसमें अपने को रंग देने, कपड़ा रंग देते हैं उसको कहते हैं ये लाल हो गया है। उसी तरह से अपने हृदय को उसके प्रेम में रंग देने का नाम है अनुराग। जिस हृदय उसके प्रेम में रंग जाए और वो रंग कभी भी न छूट सके उसको कहते हैं अनुराग। ऐसा है अनुराग भगवान के चरणों में यदि हो जाए, ईश्वर के चरणों में हो जाए तो इसको कहते हैं पना परानुरक्ति ईश्वरे। यदि किसी को यह हो गया निश्चित रूप में भगवान को वो प्राप्त कर। अब थोड़ा सा आगे से नारद जी ने कहा परानुरक्ति ईश्वरे, उन्होंने ईश्वर का कोई डिफिनेशन नहीं दिया। ईश्वर किसको कहते हैं, ईश्वर अधिकांश रूप में यही कहते हैं जो समस्त विश्व जगत की सृष्टि करके उसको कंट्रोल करता है, उससे बहुत कोई बड़ा नहीं है, उसको ईश्वर कहते हैं। अब ईश्वर कौन है नारद जी ने नहीं बताया, उन्हें केवल ईश्वर का है। अब ईश्वर कहने से किसका वहां पर बोध होगा, अब हम उसको विचार करते हैं। ध्रुव जी को उन्होंने कौन सा मंत्र दिया, ध्रुव जी थे ना उनको नारायण का मंत्र दिया ओम नमो भगवते। तो अधिकांश रूप में हम देखते हैं कि नारद जी के उपास्य साधारण रूप में ये नारद जी, नारद जी के और भी बहुत से लाख कोटि शिष्य हैं। एक प्रहलाद महाराज जी का भी नाम सुना होगा, वो भी नारद जी के शिष्य हैं और भगवान के उपासक, उनको भी यही मंत्र दिए होंगे। अधिकांश रूप में जितने उनके शिष्य होते हैं नारद जी के, साधारण रूप में उनको यही मंत्र देते हैं। किंतु हमारे महाप्रभु जी के द्वारा शिक्षित रूप गोस्वामी ने इसका जो गंभीर आशय है वो बतला। उन्होंने देखा कि नारद जी जो है अनाधिकारियों को उससे ऊंची प्राण रक्ति की बात नहीं बतलाएंगे। नरकनकल दे अपमोस्ट भक्ति टू जनरल पर्सन, वो जनरल मनुष्यों को इसका भक्ति प्राण रक्ति की शिक्षा नहीं देंगे और इसको ईश्वर किसको कहता है ये भी नहीं बतलाएंगे। साधारण लोगों को साधारण भक्ति की बात बतलाएंगे, जो भगवान को भगवान जानते हैं, जिनमें सड़ैश्वर है, गुप्त रहस्य की बातें वो विशेष विशेष अपने शिष्यों को बतलाए। रूप गोस्वामी ने इसी श्लोक की व्याख्या अपने एक श्लोक में की। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आजनाकृतम अनुकुलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। इसी सूत्र ये जो कहा प्राण रक्ति ईश्वर है, इसी की ये सबसे अच्छी सुंदर व्याख्या समय बहुत ही सुंदर डेफिनेशन है, परिभाषा है भक्ति। भागवत में भी इस उत्तमा भक्ति की का डेफिनेशन परिभाषा दी गई है, उसमें बतलाया गया लक्षणम भी भक्ति जो वच्च निर्गुणस्य उदाहृतम अहेतुक्य भविता या भक्ति पुरुषोत्तमे। कैसे मधु की धारा ऊपर से गिराते हैं, अविच्छिन्न गति से वो गिरती है नीचे, वैसे मन की धारा वृत्तियां भगवान के प्रति अविच्छिन्न गति से जब युक्त हो जाएं, तो इसको कहते हैं अनुरक्त। हमारे चित्त की जितनी भी वृत्तियां जब भगवान के प्रति अपने आप निरंतर रूप में अविच्छिन्न गति से जब प्रभावित होती हैं, बहती हैं, तो उसको कहते हैं किनके चरणों में। भागवत ने भी अभिव्यक्ति नहीं की, इसलिए रूप गोस्वामी ने अभिव्यक्ति की। अनुकुलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, वो ईश्वर कौन है। एक एक अंश कला पुरुष कृष्ण तू भगवान, ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, ब्रह्म है, बहुत से इनके नाम है, किंतु नाम होने से वो एक चीज नहीं है। परमात्मा और कृष्ण एक नहीं है, भगवान और कृष्ण एक नहीं है, किंतु स्वयं भगवान और कृष्ण एक है। आत्मा और कृष्ण एक नहीं है, किंतु परम परमात्मा और कृष्ण एक है। ब्रह्म और कृष्ण एक नहीं है, किंतु परब्रह्म इज इक्वल टू कृष्ण। इसलिए भगवत्ता की चरम सीमा ये कृष्ण है, किंतु इसमें भी कुछ गड़बड़ी है। कृष्ण के भी बहुत से प्रकाश। जब द्वारका में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के रहते हैं, द्वारकाधीश बनते हैं और अखटन घटन पटिसी शक्ति से वो सब कुछ करने वाले होते हैं, तो उनको द्वारकाधीश कहा जाता है, द्वारकाधीश कृष्ण कहते हैं। वो स्वयं कृष्ण नहीं होते, मथुरा में भी स्वयं कृष्ण नहीं होंगे, कृष्ण हैं, किंतु स्वयं कृष्ण नहीं होंगे, स्वयं भगवान नहीं होंगे। ब्रज में जब यशोदा के नंदन के रूप में, राजकुमारी राधा कांत गोपी कांत के रूप में जब हैं, तो वही मूल कृष्ण है, यही स्वयं कृष्ण। इसलिए एक एक अंश कला कृष्ण तू भगवान स्वयं, जब स्वयं भगवान के चरणों में प्राण रक्ति रहेगी या अनुकुलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति
सृष्टि होगी तो कृष्ण के चरणों में ही प्राण भक्ति होनी चाहिए, परम प्रेम होना चाहिए, तब ये उत्तम भक्ति होगी। यदि आपने परमात्मा के चरणों में भक्ति, यदि आपने ब्रह्म के चरण में भक्ति, यदि आपने जगन्नाथ देव के चरण में भक्ति की, यदि रामचंद्र की चरण में भक्ति की, यदि आपने नारायण के चरण में भक्ति की, यदि आपने द्वारकाधीश कृष्ण के चरण में भक्ति की, तो यह भक्ति पूर्ण नहीं है। पूर्णतम कब होगी? जबकि स्वयं ब्रजेंद्र नंदन के चरणों में यदि वो भक्ति होगी, प्राणुरक्ति होगी। जिस समय कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट हो, पत्थरों पर बंसी हो, कदंब की छाया में त्रिभंग ललित रूप में गोपियों को आकर्षण करते हुए और बंसी बजा रहे, ऐसे कृष्ण के प्रति इन कृष्ण का यदि दर्शन किया तो जीवन सार्थक है। आंखों का फल ये है इस कृष्ण का दर्शन करना, और प्रेम का भी यथार्थ फल है जब ये ऐसे कृष्ण के चरणों में लग गया तो ये यथार्थ। इसलिए नारद जी ने वो जो कहा प्राण रखते, ईश्वर उन बच्चों को जो शिक्षा दी उसका मूल तात्पर्य चैतन्य महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी को बतलाया, और रूप गोस्वामी ने कहा अन्य अभिलाषिता संगम, समस्त प्रकार की अभिलाषाओं को छोड़ो, यदि कृष्ण के प्रति तुम्हारी भक्ति भी होगी, अनुरक्ति भी होगी, तो उत्तमा भक्ति नहीं कहेंगे उसको, उत्तमा भक्ति नहीं कहेंगे। हमने सुना है कि जो हरिकथा में शयन करते हैं तो वो सांप बन करके आते हैं, इसलिए जरा सावधान इसे रहे जैसे कि सांप न बनना पड़े। मैं 2 मिनट के लिए कथाओं का अवतरण कर रहा हूं, बस 2 मिनट के लिए मुझे समय दे दीजिए, खूब सावधानी के साथ में सुनेंगे, पिछला भाव को तो अन्नाभिलाषिता सुन्नम, किसी प्रकार की यदि भावना रही, कामना रही, संसारिक हो चाहे परमात्मिक हो, और कृष्ण की भक्ति करते हैं तो वो भक्ति उत्तमा नहीं होगी। यदि आप भगवान का भजन करते हैं, ठीक सब रूप में कीर्तन करते हैं, स्मरण बंदन सब करते हैं, पूजा करते हैं, सभी कुछ करते हैं, किंतु वो जो पूजा है उसमें थोड़ी सी कुछ गंध लगा दी, मुझको ये चीज चाहिए, मुझको राज्य चाहिए, धन चाहिए, सुंदरी स्त्री चाहिए, विद्या चाहिए, पांडित्य चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो भक्ति दूषित हो जाती। यदि आप ऐसी भक्ति करते हैं जो ज्ञान कर्म योग तपस्या आलस्य प्रमाद के द्वारा वो भक्ति ढक जाती है तो उत्तमा भक्ति नहीं है। भक्ति होगी किंतु उत्तमा भक्ति नहीं होगी। भक्ति एक ही प्रकार की है, उत्तमा भक्ति होती है, प्रेम एक ही है, किंतु करने वाले के दूषित हृदय के कारण या उन्नत हृदय के कारण वो भक्ति का रूप बदल जाता है। जिसके अंदर में कामना वासना रहती है वो भगवान का भजन करता है, कृष्ण का भी भजन करता है, खूब कीर्तन करता है दिन रात, मायावादी भी कीर्तन करते हैं कृष्ण का, राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद दामोदर माधवेती, वो लोग भी कीर्तन करते हैं खूब बड़े प्रेम के साथ में, हाथ बंद करके कभी जमीन में लोटने पोटने भी लग जाते हैं, किंतु उनकी भक्ति भक्ति नहीं है, कृष्ण भक्ति नहीं है। इसीलिए इस श्लोक में बताया ज्ञान कर्म योग तपस्या व्रत आलस्य प्रमाद सबको दूर करके कृष्ण की प्रीति के लिए ही, कृष्ण की सेवा के लिए ही, अपने लिए उसको कुछ ना चाह करके यदि करता है तब उसको उत्तमा भक्ति कहते हैं। किंतु लोग कामनाएं वासनाएं लेकर के करते हैं, इसलिए इस भक्ति को 3 भागों में बांट दिया। ये नारद जी बतला रहे हैं, उसमें बतलाए हैं 3 प्रकार की भक्ति बतलाए, एक स्वरूप सिद्धा भक्ति, दूसरा बतलाया संग सिद्धा भक्ति, और तीसरा बतलाया आरोप सिद्धा भक्ति। जिन लोगों को शुद्ध भक्ति प्रेममयी भक्ति करने की अभिलाषा हो, इच्छा हो, तो इनको समझ करके संग सिद्धा और आरोप सिद्धा को दूर करके स्वरूप सिद्धा भक्ति करनी चाहिए। मैं बहुत संक्षेप में थोड़ा सा बतला रहा हूं क्योंकि दक्ष प्रजापति का प्रसंग मुझे बतलाना है, उसमें बहुत सी शिक्षाएं निहित हैं।
स्वरूप सिद्धा भक्ति उसको कहते हैं, इस श्लोक में जो बताया गया है, कोई भी कामना न हो हमारे अंदर, यहां तक कि मुक्ति की भी कामना न हो, अपने सुख की कामना न हो, और ज्ञान कर्म योग तपस्या पर से बहुत दूर वाली भक्ति रहे, तन मन वचन से और भावनाओं के द्वारा यदि हम भक्ति करते हैं तो ये स्वरूप सिद्धा भक्ति, उसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाठ सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शनम सत्सात्मनिधि, ये नौ प्रकार की भक्ति है। किंतु याद रखिए, ये नौ प्रकार की भक्ति भी करते हैं और गुरु जी हमारे नहीं है, या उस रहते हुए भी गुरु जी में पक्की निष्ठा नहीं है, तो भक्ति भक्ति नहीं होगी। ये होने पर भी फिर से मैं दोहराता हूं, ये नौधा भक्ति कोई करता है किंतु गुरु से कोई संबंध नहीं है, यही वहां से सुन लिया और भजन करना आरंभ कर दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम सब कर रहा है, किंतु गुरु जी नहीं है और गुरु के चरणों में ये अपने को निवेदन नहीं किया। इति पुंसार्थिता विष्णु भक्ति वाले सुखन, ये नौधा भक्ति करने पर भी गुरु के चरणों में यदि हमने अपने को आत्मसमर्पण नहीं कर दिया और गुरु के मुख से श्रवण नहीं किया तो ये भक्ति भक्ति नहीं होगी भाई, ये सकामा भक्ति हो जाएगी, कुछ स्वरूप सिद्धा नहीं हो करके संग सिद्धा अथवा आरोप सिद्धा। इसलिए गुरु के चरणों में शरणागत होकर के वैष्णव के अनुगत्य में शरणम कीर्तनम करते हैं तब तक ये सिद्धा उत्तमा भक्ति हो सकती है। संग सिद्धा किसको कहते हैं? भक्ति स्वरूपता नहीं, श्रवण कीर्तन तो नहीं, एक आदि परम उदार है, उससे शत्रुता करते हैं किंतु वह शत्रुता नहीं करता है, तीनादपि सुनीत है, करोड़ों सहिष्णु अमान्य और मानव जी हैं, बड़े कृपालु हैं, सच बोलने वाले हैं, बड़े चरित्रमान हैं, सब गुण हैं, किंतु भक्ति नहीं है, इन गुणों का कोई भी मूल्य नहीं। और यदि कोई भक्त है तो उसमें ये यदि गुण रहे तो उन गुणों को भी भक्ति कहते हैं, भक्ति के संग के कारण इनको भक्ति कहा गया है, असल में ये भक्ति नहीं है इसलिए इनको संग सिद्धा कहते हैं। जैसे एक कीड़ा है, ठाकुर जी के ऊपर में नहीं जा सकता, एक फूल की माला ले लीजिए, एक फूल लीजिए और फूल को यदि चढ़ाएं और फूल में कोई एक छोटा सा कीड़ा है तो भी एक चींटी भी पहुंच जाएगी ठाकुर जी के, ये फूल के संग से हुआ, ऐसे भक्तों के संग से ये यदि गुण है तो वो भक्ति उनको मान लिया जाएगा और नहीं तो वो संग सिद्धा भक्ति है। आरोप सिद्धा भक्ति किसको कहते हैं? स्वरूपता भक्ति नहीं है, आम का पेड़ एक है, उसको आम का पेड़ कहा, आम के पेड़ के पास में एक बबुल का पेड़ है, बबुल के पेड़ के नीचे आप खड़े हैं, आपको आम की मंजरी का गंध दूर से आया, आपने सोचा जैसे ये बबुल का पेड़ ही से गंध आ रहा है, ये बबुल का पेड़ ही आम का पेड़, इसका मतलब क्या? आरोप कर रहे हैं बबुल के पेड़ में आम का होने का, बबुल का पेड़ आम नहीं है, उसे आपको आम नहीं मिलेंगे। इसी तरह से जो भक्ति नहीं है किंतु आपने उसमें आरोप कर दिया कि ये भक्ति है तो ये आरोप कैसे? हमने एक बगीचा लगाया, बगीचा लगाना भक्ति नहीं है, एक पानी के लिए सरोवर खुदवा दिया, लोगों के उपकार के लिए कोई काम करा दिया, ये भक्ति नहीं है। किंतु उस बगीचे का फल कोई भक्त लेकर के ठाकुर जी को या वैष्णव को देता है तो प्रकरांतर उसमें बहुत दूर से वो भक्ति का काम हो जाएगा। किंतु यदि बगीचा जो लगाया और बगीचे का फल भगवान के लिए सब समय समर्पित नहीं होता तो यह काम भक्ति नहीं है। किंतु इसी को यदि समझ लिया है कि बगीचा लगाना ही हमारा भक्ति है तो यह आरोप, इसी से भगवान आरोप सिद्धा है। इसलिए श्रवण कीर्तन इत्यादि जो है यही स्वरूप सिद्धा भक्ति है, किंतु गुरु के चरणों में आश्रय लेकर के वैष्णव के अनुगत्य में भक्ति की जाए तब वो भक्ति स्वरूप सिद्धा, यही स्वरूप सिद्धा भक्ति क्रमशः वो मध्यम और इसके बाद में उत्तम भक्ति होती है।
उत्तमा भक्ति का आदर्श गोपियां केवल हैं सबसे श्रेष्ठ। और आरंभ जब करते हैं, ध्रुव जी हैं, प्रहलाद हैं, इनसे आरंभ। इन्होंने बच्चों को शिक्षा दी और बच्चों ने उनकी शिक्षा ग्रहण करके कहा, अब हम लोग संसार में नहीं जाएंगे, अब तो हम भगवान का भजन करेंगे। बस कुछ दिनों के बाद में बच्चों को जब पूरा शिक्षा हो गई, बच्चों ने कहा कि अब आप आदेश दीजिए, भगवान का भजन करने के लिए हम जंगल में चले जाएंगे वन में। बस उनको मंत्र दे दिया और वो लोग बेचारे चले गए गुरु के आश्रम से निकल करके भजन कर। दक्ष प्रजापति जब समय हुआ, राजा हमारे बेटे किधर गए, बच्चे किधर गए, जब वो आश्रम में गया देखा कि बच्चे नहीं, नारद जी पर बहुत बिगड़ा, बच्चों की बुद्धि कहने खराब कर दी, तुमको उनको बच्चों को शिक्षा देकर के हमारे पास भी भेजना चाहिए गया था और तुमने वहां पर भेज दिया भजन करने के लिए। कहा कि मुझको यही विद्या आती है, दूसरी विद्या आती नहीं, मैं क्या करूं। बहुत क्रोधित हुआ कि कुछ कहा नहीं, देखो हमारे बच्चे और तैयार हो गए हैं, ऐसी गड़बड़ी शिक्षा मत देना, सन्यासी हो गए, ऐसी शिक्षा देना जिससे कि लोग अधिक से अधिक बच्चे पैदा कर। अच्छी बात, मैं चेष्टा करूंगा। फिर आया, फिर उनको वही शिक्षा दी, सैकड़ों बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जो भगवान के परम भक्त हो गए और संसार में नहीं लौटे। कुछ दिनों के बाद में फिर वो आया, कभी हमारे लड़के किधर गए। उन्होंने कहा, भाई बच्चे तो तुम्हारे घर लौट गए होंगे, किधर गए मुझे तो पता नहीं। वो बहुत बिगड़ा और बिगड़ करके देहात में बुद्धि के कारण उनको अभी संपात दे दिया, श्राप दे दिया, जाओ एक जगह तुम कभी भी 15 मिनट से अधिक नहीं रुक सकेगा। एक गाय को ढोने में जितना समय लगता है बस उतना ही देर तक तुम खा रहेगा, किसी को ऐसी शिक्षा एक जगह जम करके नहीं दे सकेगा, नहीं तो उनकी बुद्धि गड़बड़ कर देगा, इसलिए संसार में सब जगह भ्रमण कर देगा। नारद जी ने कहा, एव मस्तु, बहुत ही अच्छा हुआ, मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक जगह आबद्ध होकर रहता था और भगवान की बड़े पर में बड़ी भी कृपा हुई जो अब मैं विश्व में सर्वत्र घूम घूम करके भगवान की कथाओं का प्रचार करूंगा। इसलिए विषय युगों का अभिसंपात भी भक्तों के लिए वरदान हो जाता है। बड़े प्रसन्न होकर के गोविंद भुज गुप्तायन द्वारा आवासित नारद अभिज्ञा कृष्ण उपासना, जब उनको स्थिर बैठने की जरूरत होती द्वारका में चले जाते, क्योंकि द्वारका में वो सांप उनका जाता नहीं था। गोविंद भुज गुप्तायन, गोविंद की भुजाओं से परिलक्षित द्वारका पूरी थी, उसका अभिसंपात नहीं जाता। बड़े आनंद के साथ में 1 महीने 2 महीने 4 महीने अपना वहीं पठारते और कृष्ण का दर्शन करते और भगवान का भजन करते। किंतु देखो, उन्होंने उसका अभिसंपात तो लिया सिर पर, अब उन्होंने उससे कोई भी अभिसंपात नहीं दिया, कोई श्राप नहीं दिया, मन में कोई बुरा भी नहीं समझा। वैसे हम वैष्णवों की कहीं निंदा कर दें, वैष्णवों को मारे पीते हैं, हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में मारा गया, किंतु भगवान से उन्होंने प्रार्थना यही की, प्रभु इसका अपराध दूर हो जाए, आप इसको क्षमा दीजिए। वो तो क्षमा कर देंगे, नारद जी तो बड़े उच्च कोटि के भक्त, उन्होंने क्षमा कर दिया, किंतु उनके चरण की धूलि भाई याद रखो, नहीं क्षमा करेगी और नहीं करेगी। यदि तुमने वैष्णव के चरण में अपराध किया, वैष्णव लोग नहीं लेंगे अपराध, किंतु उनकी चरणों की धूलि कदापि तुमको कभी भी क्षमा नहीं कर सकती। वैष्णव की चरण धूलि क्या है, अब इसी को थोड़ा समय आप लोगों को बतला रहा, कैसे वो होता है। उन्होंने तो क्षमा कर दिया, कुछ नहीं कहा, किंतु उनकी चरण धूलि इस रूप में दिया जाता है, भगवान जो है उसको नहीं क्षमा, उनकी बहुत अनंत शक्तियां होती हैं। प्रभु तो जन्म से मर भीषण कहा गौ बंगला के प्यार में चैतन्य के सामने लिखा, प्रभु तो जैसे तैसे बड़े कृपालु हैं, किंतु भीषण तारगौन उनके जो गण है ना, परिषद लोग हैं, बड़े कड़े हैं, महाप्रभु की परम दया है, ये लोग साजी नहीं क्षमा करेंगे जब भी कोई वैष्णव की निंदा कर दे। इसलिए नारद जी के क्षमा करने पर भी जथात में प्रभु ने उसको ग्रहण कर लिया। कहा अच्छा तू हमारे भक्तों को तुम ऐसे अभी संपात करता है, ठीक है। उसकी बुद्धि कलुषित होने लगी, नतीजा ये हुआ फल। वैष्णव अपराध का या नाम अपराध का फल एक दो दिन में ही नहीं मिलता, थोड़ा सा खड़ा फरना चाहिए, थोड़ा सा अधिक दिन पर मिलता है। अब ये अभी संपात देकर के घर में चला गया, किंतु उसकी बुद्धि ऐसी हो गई अब किसी भी भक्त को भक्त नहीं मानता। पहले भगवान की जैसे तैसे अभिलाषा से भी पूजा करता था, अब वो धीरे 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 कमने लगी। उसकी उसके बहुत सी संतान हुई, कुछ लड़के हुए कुछ लड़कियां। लड़कों को तो कुछ को तो इन्होंने भक्ति में लगा दिया और लड़कियां रह गई। उसमें सबसे जो छोटी थी उसका नाम था सती, बड़ी रूपवती, बड़ी गुणवती, बड़ी स्नेहवती, बड़ी सुंदरी, सब जितना एक लड़की को गुण होना चाहिए सती जी में था। बड़ी मधुभाषी थी वो, दक्ष प्रजापति की और उनकी पत्नी की बड़ी प्यारी थी। अधिकांश रूप में छोटी संतान माता पिता को अधिक प्यारी होती है, विशेष करके लड़की यदि हो तो पिताजी की बड़ी प्यारी होती है। माताजी के तो लड़के प्यारे हुए, किंतु पिताजी की यह बड़ी प्यारी है, बड़ा सुंदर रूप से प्यार किया और सोचा कि फिर समय जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होगा उसी से इसकी शादी करूंगा। वो धीरे धीरे नारद जी उनके घर में आते जाते, अब उससे सुना शिव जी की महिमा और शिव जी के गुरु का वैष्णवाना यथार्थ। वैष्णव में श्रेष्ठ भक्तों में श्रेष्ठ शंभू जी हैं, उनकी महिमा सोच करके लड़की ने संकल्प कर लिया, मैं यदि शादी करूंगी तो वह शंकर के साथ में, महादेव के साथ में और किसी के साथ में शादी। हमारी आज के लड़कियों की शादी एक बार होती है, आजकल तो बहुत होती है, आजकल नहीं पहले की बात। पर संकल्प कर दिया विवाह हो गया, जैसे रुक्मिणी जी का संकल्प कर लिया विवाह हो गया, इन्होंने संकल्प कर दिया। लोगों ने इनको मना किया, इनके पिताजी ने भी कहा ये भतूरा खाता है, हड्डियों की माला पहनता है, शाण पर चलता है, शाणनी जैसा है, हथियार त्रिशूल रखता है, बड़ा भयंकर सर्पों की माला पहनता है, पागल रहता है, उसको देह की सुध बुद्धि नहीं करती। इस लड़के के साथ मैं अपनी लड़की की शादी नहीं करूंगा। किंतु ब्रह्मा जी आ गए इनके बड़े पूज्य पिता के पिता, उन्होंने कहा कि देखो शंकर के साथ में अपनी लड़की को शादी कर देना मेरा आदेश है, और नहीं करेगा तो तुम्हारा भंस हो जाएगा, हमारी बात मान करके करो। अब तो बड़ी मुश्किल में पड़े, बात हो करके शंकर जी के साथ में अपनी लड़की को दे दिया। थोड़ी देर के बाद में, दिनों के बाद में, वो एक दिन सभा में बैठा था, स्थूल बुद्धि थी, देह में आत्मबुद्धि थी। आप लोग भी देह में आत्मबुद्धि हटाने की चेष्टा करेंगे नहीं तो बड़े बड़े अनर्थ अपराध और भगवान से दुखी हो जाएगी। तो वो देह बुद्धि के कारण उस सभा में शंकर जी भी थे और ब्रह्मा जी भी थे, वो सभा में गया, सभी सभा के लोग उठ करके उसको प्रणाम किया, किंतु शंकर जी ने उठ करके प्रणाम नहीं किया, इसलिए ब्रह्मा जी को प्रणाम करके और उनके तरफ में तीक्ष्ण निगाह से देखता है। ये बड़ा ठीक है, अकल नहीं, मैंने इसके साथ में अपनी लड़की की शादी की है तो ये हमारा पुत्र बनता है, और पुत्र हमारे हमको देकर के खड़ा नहीं हुआ संवादन न करे, ये तो कोई सदाचार जानता नहीं है। कहा जैसे तू बंदर के समान है, आंखें भी तुम्हारी धसी धसी, तुमने बेकार कहा हमने अपनी लड़की की तुम्हारे साथ में शादी, मैं जानता था कि तुम ऐसा ही, तुम सम्मान नहीं देना जानता, इसलिए मैं तुमको अभी संपात देता हूं, तुम्हारा कोई पूजा ना करे, पूजा करेगा तो वो भ्रष्ट हो जाए सदाचार से। और वो सदाचार विरोधी हो, इस पर शिव जी बड़े दुखी हो गए। और इसके बाद में आप सब जानते हैं, अब उसके बाद में शंकर जी बड़े दुखी होकर के लौट आए, सभा भंग हो गई सब लोग। अब तब से ये उनको अपना शत्रु मान लगा, शंकर जैसे परम भगवत भक्त को भी क्योंकि ब्रह्मा 100 जन्म के बाद में तब शंकर बनता है। ऐसी यह शंकर जी की पत्नी है और उनसे द्रोह करने लगा। इधर में एक बात हुई, देखो वैष्णव के चरणों में अपराध का कितना बड़ा भयंकर फल होता है। उस नारद जी के थोड़ा सा भी संपात देने से शंकर जैसे भक्त के प्रति इसका अपराध हुआ, और शंकर जी के प्रति अपराध होने से क्या फल होता है ये जरा देखिए। कुछ दिन के बाद में पार्वती जी सती जी शंकर के साथ में रह रही थी। शंकर जी एक दिन उठे, बोले जी सती तू हमारे साथ में चलो, अभी हमारे पर ब्रह्मा स्वयं भगवान राम के रूप में आए हैं और वो बड़ी विचित्र मनोहारी लीलाएं कर रहे हैं, अभी उनका हम दर्शन करेंगे, बहुत निकट में दंडकारण्य में है। बोलिए चलिए दोनों वहां पर। शंकर जी ने देखा सीता जी की चोरी हो गई है, रावण हरकत से ले गया है, और लक्ष्मण जी के साथ में रामचंद्र जी प्रेम में परवश होकर विरह में हाय हाय करते हुए बड़ी व्याकुल हो रहे, आंखों में आंसुओं की लड़ी झड़ रही, देखी शुद्ध दिन हासिते तुम कहां हो, ऐसे कर रहे और रो रहे। पेड़ों से पूछते हैं, अरे पेड़ तेरे नीचे सीताजी रहती थी, हमारी प्यारी सीताजी, वो किधर गई बतला सकता है। गोदावरी के घाट से पूछे, गोदावरी तू सख्त बतला मेरी प्रिया की किधर गए, एकदम पागल हो रहे हैं। और उसी समय शंकर जी पहुंचे वहां और प्रभु को आशा देकर के प्रेम से उनके भी नेत्रों से आंसू झड़ने लगे और उनको बहुत दूर से परिक्रमा करने के बाद में शंकर जी ने उनको साष्टांग प्रणाम किया, चार पांच परिक्रमा की जिससे कि प्रभु उनको न देख सके और ये प्रभु को दूर से देख करके लीला में डिस्टर्बेंस न हो, और उनको प्रणाम किया और फिर प्रणाम करके बाधा न देकर के चलने लगे कैलाश की ओर। इतने में सती जी ने कुछ पूछा, प्रियतम आपने किसको प्रणाम किया, किसको प्रणाम कर रहे हैं, किसको प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने आराध्य देव परब्रह्म जगत के सृजन करने वाले भी लोगों के भी ईश्वरों के परम ईश्वर को मैंने प्रणाम किया। प्रभु मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये एक मनुष्य साधारण इतना दुर्बल कमजोर इसकी सीता जी को लेकर के हरण करके कोई ले गया, मैं जानती हूं ये कौन ले गया और इसको पता नहीं है, मैं जानती हूं रावण इसको ले गया है और लंका में लेकर के रखा है शोक पाठ चाहते थे, और इस मनुष्य को पता नहीं जो मेरी सीता जी विलाप कर रहा है, और ऐसा कामी समझता नहीं ईश्वर स्त्री के प्रति आशा जो उसके लिए बिलबिला करके रो रहा है, ये कदापि ईश्वर नहीं हो सकता। आपने प्रणाम किसको किया, मुझे प्रिय मैं ठीक ही कह रहा हूं, मैंने परब्रह्म की अपने राम को ही प्रणाम किया, ये परब्रह्म वही राम है, यदि तुम इच्छा करो तो उनको तुम कुछ परीक्षा कर सकती हो। ये कह करके बड़े दुखी हुए, क्यों दुखी हुए, यदि किसी को भगवान के विषय में और विशेष करके गुरु के संबंध में यह संदेह हो जाए कि हमारे गुरु जी ठीक है ही नहीं, संदेहात्मा विनश्यति, यदि गुरु के चरणों में यह संदेह हो गया हमारे गुरु जी मूर्त है कि बद्ध है, ये ठीक है कि बेठीक है, भगवान है कि नहीं है, हमारे शास्त्र सत्य है कि नहीं, भागवत प्रमाणिक है कि नहीं, तो व्यक्ति का विनाश गीता या से संदेहात्मा। गुरु करने के पहले ही जो कुछ परीक्षा करना है कर लो, गुरु करने के बाद में यदि तू करेगा तो तुम्हारा पर अपर पर लोक लोक प्रयोग सब तुम्हारा चौपट हो जाएगा, इसलिए जो कुछ परीक्षा भी करनी है, एक बरस दो बरस तीन बरस चार बरस दस बरस जीवन भर भी परीक्षा करें तो कर लो इसी समय, पीछे तुम्हारा संदेह नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस संदेह के कारण तुम्हारी रही सही भक्ति भी उखड़ करके सूख जाएगी। शंकर जी ने देखा इसका सर्वनाश हुआ, मैं इसका गुरु हूं इसका पति हूं और हमारे बच्चों ने इसने संदेह किया, भगवान के रूप में इनको ग्रहण नहीं किया। तब उन्होंने दुखी होकर के अच्छा परीक्षा कर लो, सती जी ने कहा ठीक है अब क्या परीक्षा करूं, तो उन्होंने सोचा ये कामी व्यक्ति है, अपनी स्त्री के लिए मर रहा है, बिलाप कर रहा है, मैं यदि सीता जी का रूप बना दूं और इसके सामने यदि चला जाऊं तो ये दौड़ करके आएगा और हमें आलिंगन करेगा, अखबार में भर लेगा, गले से लगा लेगा और हंसने लगेगा, मेरी प्रिया मिल गई, इससे बहुत इसको खुशी होगी, इसलिए सीता जी का ही रूप बना लूं। इसलिए सीता जी का जब अपहरण हुआ ठीक वैसे ही सीता जी का वैसा ही कपड़ा, वैसा ही रूप, वैसा ही रूप सब बना करके वो सीता जी के रूप में खड़ी हो गई। रामचंद्र जी जब जा रहे हैं उधर ही से वो आ रही, किंतु रामचंद्र जी ने उनको देखा नहीं, वो दूसरी तरफ में मुड़ गए, देखा जी हमको तो देखा नहीं। तो फिर रामचंद्र जी इधर जा रहे हैं उधर वो जाकर के फिर उधर से आकर के खड़ी हो गई, जिधर जहां रामचंद्र जी जाते हैं उधर खड़ी होती है और रामचंद्र जी उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, वो समझ ना सकी। अंत में जब उनके एकदम ठीक निकट में आकर के सामने खड़ी हो गई तो उन्होंने दोनों हाथ उठा करके जोड़ करके उनको प्रणाम किया, मैया तू यहां कहां भटक रही, भटक रही है ना, भगवत तक से भटक रही, इसे कहा यहां कहां भटक रही, हमारे प्रभु किधर गए, वो कहां है, शंकर जी कहां है। कहा जा रही कैसे जान लिया ये, तो मैं तो इसको सीता जी का रूप बनाया और हमको प्रणाम किया, ये तो जान लिया, तब तो मालूम बताइए शंकर जी हमारे ठीक कह रहे थे, ये वही परब्रह्म है। तो उन्होंने हाथ झुका करके और ऐसे उनको प्रणाम किया, ये वक्त ये है, किंतु पूरा भी विश्वास नहीं हुआ। जब उन्होंने आंख सिर उठा करके और आंख खोल करके देखा तो देखा कि जिधर दृष्टि पड़ रही है उधर उधर सीताराम और लक्ष्मण तीनों,
सीताराम और दिखा इधर उधर उधर चारों तरफ सीता और दूसरा कोई रूप ही नहीं, तब एकदम लेट गई जमीन के अंदर और लेकर के साष्टांग लंबा उनको दंडवत प्रणाम किया, कहा जी प्रभु मेरी मेरा अपराध हो गया, अब उसको पता लग गया आप सचमुच में परम, आपने अनुग्रह करके हमें बताया, जय ज्ञाने से देव गणाय, भागवत में कहा गया है अथापि ते देव पदम सुदत प्रसाद अलेशानुग्रह, वही भगवान यदि कृपा करते हैं अपने को जना देंगे तो उनको कोई जान सकता है, बिना भगवान के कृपा से उनको कोई नहीं जान सकता, हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं भी भगवान की कृपा, गुरु जो मिल गए ये भी भगवान की कृपा, हम आगे जो बढ़ेंगे वो भी भगवान की कृपा, सब भगवान की कृपा है भाई, जो सर्वत्र ये देखता है यही परम सौभाग्यवान है, उन्होंने दिखा नहीं ये तो उनकी बड़ी कृपा, हमने उनको अब समझा, अब मेरा संदेह एकदम नहीं रहा, अब उठ करके खड़ी हुई और प्रणाम करके अब जाने लगी शंकर, अब देखा वही अकेले राम है, हा सीता तुम कहां हो, हा सीते तुम कहां हो, और आंसुओं की खड़ी अब निकलने लगी, इसको देख करके उनको प्रणाम करके शंकर के यहां जब गई, शंकर जी ने कहा परीक्षा करनी, तो उन्होंने झूठ बोल दिया, एक तो संदेह करके गड़बड़ किया, गुरु से झूठ मत बोलो, जैसा तुम हो वैसा ही कहो, यदि तुमने कोई अपराध किया तो स्पष्ट कह दो, गुरु जी आज हमने ये दोष किया, यदि गुरु जी पूछते हैं तो जरूर स्पष्ट कर दो, तो उन्होंने झूठ बोला, प्रभु आप मेरे पति हैं गुरु हैं, मैं उनकी क्या परीक्षा करूंगी, मैंने कुछ परीक्षा नहीं की, बात तो छोटी थी गुरु जी से बात छोटी थी, बात के भी हम झूठ बोलते हैं, वैष्णव से बोलता है, किंतु ये महान अपराध हो जाता है और परमात्मा से एकदम सीधा नीचे लगा देता है, हम लोग उस पर विचार नहीं करते, चलते झूठ बोलते झूठ, बिजनेस में झूठ, भक्ति में भी झूठ, याद तक गुरु भी नहीं मानते भगवान भी नहीं मानते, इसलिए ऐसा कभी ना प्रारंभ में से ही ऐसा हो सत्य व्यवहार, केवल जागतिक सत्य ही नहीं पारमार्थिक सत्य हो, ये गुरु की बड़ी सेवा, और ऐसे ही गुरु हृदय में गुरु जी अपने तथ्य को प्रकाश करते हैं, भगवान प्रकाश करते हैं। अब तो हुआ शंकर जी ने देखा अरे ये झूठ भी बोल दिया मेरे साथ, और पहले हमारी बात में शंका भी थी ठीक, अब इसको अपनी मैया के रूप में ग्रहण करूंगा, पत्नी और शिष्या के रूप में नहीं, क्योंकि सीता जी का रूप हमारे आराध्या देवी का रूप बना है, आज से अब वो संबंध जगत से अब मैंने काट, इतने में फूलों की वर्षा हुई शंकर जी के ऊपर, कहे आपके समान ऐसा कोई संसार में नहीं है जो ऐसी प्रतिज्ञा कर सके,
आप तो आप साधु साधु साधु। सखी जी ने कहा प्रभु ये आकाशवाणी कैसे हुई साधु साधु, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की? तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अब बोलना चलना कम हो गया। उसी समय से प्रेम पूर्वक मुस्कुरा करके जो बोलते थे अब वो कम भी रूप में चला गया। और जब अपने आश्रम में पहुंचे तो बाएं स्थान ना देकर के दाएं स्थान दिया। अब समझी कि उन्होंने हमको माता के रूप में दिया, अब शिष्य के रूप में उन्होंने छोड़ दिया और पत्नी के रूप में हमको भी नई शरीर को रख करके लाभ किया है। इसलिए छल से बल से सोचा जी अब शंकर जी को मिलने के लिए पूर्व मुझको नया शरीर से आना पड़ेगा क्योंकि हमारा अपराध हुआ है। तब वो पिताजी के यज्ञ में शंकर जी के मना करने पर भी गई और वहां कैसे अपने शरीर को छोड़ दिया, क्या कर दिया, जल करके भस्म हो गए। इनका तो वहीं तक समाप्त हो गया अपराध, शंकर जी ने क्षमा कर दिया। किंतु उस दुष्ट का क्या हुआ जो कि नारद जी को अभी संपात दिया और फिर शंकर जी को अभी संपात दिया भक्तों को, उसकी गति जरूर होगी। शंकर जी ने देखा ये सती हमारी इसी दुष्ट के लिए देहात्म बोध के लिए ये बकरा है। बकरा किसको कहते हैं? और जब बकरा उसको कहते हैं होता नहीं सी गोट और गोट, तो उसको कहते हैं दिन भर बच्चा उत्पन्न की चिंता में रहता है। एक साथ में उसके 10-20 बच्चे होते हैं, तो ऐसे बकरे के उन्हीं जैसे संतान उत्पत्ति में लगा वो बकरे के समान है। शंकर जी का ये सिर बकरे के समान है, इसलिए उसका ये सिर कटवा दिया। और जब कभी उनका विध्वंस हो गया और अंत में जब ब्रह्मा और विष्णु उनके पास में शंकर जी के पास में गए कहे इसको जिला तो हम देंगे किंतु बकरा होकर के जी भाई, इसलिए एक बकरे का सिर काट करके उसको लगा दिया। मनुष्य होने पर भी मनुष्य बकरा ही है, यदि भगवान का भजन नहीं करता है पर तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको बकरे की गति। इस अपराध का बच्चों के अपराध का ऐसा महत्व फल है। अब बच्चों के बचनों में संदेह करने का सती जैसा फल है। तो उनका जो एक दूसरे जन्म में उनका कल्याण हो गया शंकर जी को मिल करके, वो भक्ति उनको तो हो गई। किंतु हम लोगों का ऐसा यदि शंकर जी गुरु न मिले और वैसा अपराध और संदेह करे तो हमारी गुरुगति बहुत हो जाएगी। इसलिए ऐसे अपराधों से बच करके हम चले। इसीलिए उपाख्यान श्रीमद् भागवत में दक्ष प्रजापति का दिया गया है, हम भगवान के प्रति शुद्धा भक्ति करें जैसे रूप गोस्वामी ने बताया। हमने बताया संग सिद्धा आरोप सिद्धा भक्ति को दूर कर सर्वपथ जो भक्ति है उस भक्ति को हम करें। कैसी भक्ति करेंगे? हमारे बीच सुना चौवर्ती ठाकुर जी ने एक श्लोक में दिया है अरथो भगवान ब्रजेश तद्धाम बृंदापनम रमना काचितुपासना मधुवद वरदे न जाकल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणामलम प्रेमात्मर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत्रादरो नः परः। चैतन्य महाप्रभु का ये विचार भक्ति का सर्वोत्तम विचार ये है। कृष्ण ही ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर ही गोपियों के प्राण बल्लभ, यही हमारे आराध्य। कृष्ण स्वरूप बहुत से हैं, राम इत्यादि उन्हीं के रूप है, द्वारकाधीश कृष्ण मथुरेश कृष्णमणि का रूप है, किंतु हमारा आराध्य एकमात्र ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर राधा कांत राधा रमण है राष्ट्रीय। इस चीज को समझना चाहिए, जैसे हमारे आराध्य कृष्ण है वैसे हमारे आराध्य ब्रजभूमि है। तद्धाम वृंदावनम ये वृंदावन, ये वृंदावन और कुछ है बलदेव प्रभु जी हुए वृंदावन का। यदि हमारे हृदय में धाम नहीं होगा बलदेव प्रभु जी नहीं उदित होंगे, ऐसे कृष्ण की आराधना कदापि हम नहीं कर सकते। इसलिए बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु जी की कृपा अत्यंत अवश्यंभावी है, उनकी शरण में हम जाएंगे। कहते हैं पुरुषे रखी हईते नहीं से लभिष्ट जगाई मधाई हईते नहीं से लभिष्ट मोर नाम जय जय तार पाप है मोर नाम जय सुने तार माप पुण्य खाय एमन निर्घिन्न मरे की बात कृपा करे एक नित्यानंद बिनु जगत मचाए। नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु जी हमारे मूल सेंटर है, वही हमारे अखंड गुरु तत्व है, उन्हीं गुरु से हमारी ये सब गुरु परंपरा आती है। इसलिए नित्यानंद प्रभु जी, बलदेव प्रभु जी हमारे अखंड गुरु तत्व हैं। पैखाना से भी कह जा, पैठने का मैं कीट हूं, मैं मेरा जो नाम लेगा उसको पाप होता है, और मेरा जो नाम लेगा सुनेगा उसका पुण्य क्षय हो जाएगा, ऐसा मैं निर्घृण्य हूं, घृणा जी को। किंतु नित्यानंद प्रभु के शरण में लेने से वैसे भी हमारे ऊपर भी कृपा कर देंगे, ऐसे नित्यानंद प्रभु है तो कोई कारण नहीं है, वो धाम के रूप में वृंदावन, वृंदावन में ही कृष्ण की आराधना होगी और कहीं नहीं होगी। गोपियों की आराधना सर्वश्रेष्ठ आराधना, गोपियों ने कैसे कृष्ण की आराधना की, सब आराधनाओं को उन्होंने फल दिया, किंतु गोपियों के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले जैसे मैं तुम्हारा न पा रहे हम निर्वच्य। कृष्ण ने सबको वर दिया है, गोपियों से कहा गोपियां तुम हमसे वर मांग लो, तुम्हारे ऋण का ऋणी बन जाऊं। गोपियों ने जी ठीक है हम लोग वर मांग, आपकी सबसे सुंदर सेवा हम कर सके यही वर, अपनी सेवा को भेज। कृष्ण ने कहा कि तब मैं और ऋणी बन जाऊंगा तुम्हारी, तुमको सेवा देने से। गोपियों ने कहा कि देखिए आप सबको वर देते हैं, आप हमसे वर मांगे, सबको वर देने वाले कृष्ण हैं, किंतु कृष्ण को वर देने वाले कौन हैं? ये गोपियां कैसे, गोपियां सब प्रकार से कृष्ण को सुखी बनाना चाहते हैं, वर तो लिया जाता अपने सुख के लिए, कृष्ण की कहीं कहीं भी इच्छा कोई पूर्ति नहीं हुई, कहीं भी नहीं हुई। तब श्रीमती राधिका का के शरण में गई, ये चैतन्य महाप्रभु के रूप से आप लोग समझते हैं, राधा जी की भाव और उनकी कांति लेकर के राधा भाव का आस्वादन करने के लिए महाप्रभु के रूप में हुआ है, अनर्पित चरण की रात, इसलिए इस चीज का अनुभव करने के लिए थी। राधा जी का हमारे प्रति प्रेम कैसा है, उनका हमारे प्रति प्रेम कैसा है, उनका प्रणय कैसा है, और हमारी माधुरी को कैसे वो आस्वादन करती है, आस्वादन करके उनको कौन सा सुख होता है, ये कृष्ण को पता है। इसलिए राधा जी की सखी विशाखा जी को अर्थात राय रामानंद को अपना शिक्षा गुरु बना करके इस चीज को आस्वादन किया। राधा जी कृष्ण की समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों गोपी बन जाती हैं और उनकी एक एक इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। ये रासलीला कृष्ण जो कि है किस लिए, बल्कि कृष्ण नहीं राधा जी उनकी शक्तियां, राधा जी ने क्या कृष्ण की काम पूर्ति के लिए कहा एक जगह, पीछे ऐसे तृतीय दे अठ जमार से मत प्रति हो चरणे कुमार, आत्मा इंद्रिय प्रतिबंध था तारे बोले काम, कृष्ण इंद प्रति इच्छा धारे थे, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए सुख के लिए जो कुछ करते हैं उसको कहते हैं काम, और कृष्ण की इच्छाओं को परिपूर्ण करने के लिए उनको सुख देने के लिए जो कुछ भी हम करते हैं उसको कहते हैं प्रेम, या प्रेम राधा जी में सबसे अधिक स्थित। वही राधा जी कृष्ण की कामना को पूर्ण करने के लिए कोटि कोटि गोपी आठ सखी ललिता विशाखा इत्यादि हुई उसी के लिए कृष्ण के साथ में राज करती हैं, मान करती हैं, ये सब कुछ कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। इसलिए यदि हम राधा जी की गोपियों की दासी की अनुदासी हो सकें, चैतन्य महाप्रभु जी की यही इच्छा, इसी चीज को देने के लिए जगत में आए थे। उन गोपियों के चरण में कोटि कोटि बार हम प्रणाम करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। वंशा कल्प सरुभ्य कृपा पतिता राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय बाबा रमन हरि गोविंद जय जय Yeah.